नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयिर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोय सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मङ्गलम्। चत्तारि मङ्गलम् अरहंत मंगलम्। सिद्ध मंगलम्। साहु मंगलम्। केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लुगुत्तमा अरहंत लोगुत्तमा। सिद्ध लोगुत्तमा। साहु लोगुत्तमा। केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि। सिद्ध शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलिपन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि। परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर महाराज की जय। सवेरे हमने बताया था कि एक एमएस पढ़ने वाली बहन ने हमसे प्रश्न किया, भोपाल की बात है, कि उनके सर पूछ रहे थे, उनके जो प्रोफेसर थे वो पूछ रहे थे कि तुम्हारे जैन दर्शन में, तुम्हारे जैन मत में जो संलेखना होती है, वो संलेखना इच्छा मरण है और इच्छा मरण आत्महत्या है। और जैन धर्म अहिंसा प्रधान है, फिर ऐसी हिंसा तुम्हारे धर्म में कैसे स्वीकार होती है? तो उसका उत्तर देते समय हमने कहा कि आप एक कॉपी ले लीजिए और पेन से लिखते जाइए फिर हमने उनको बताना प्रारंभ किया कि एक तरफ आत्महत्या, दूसरी तरफ संलेखना, इन दोनों में अंतर क्या है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक दोनों एक जैसे लगेंगे। तो सागर यूनिवर्सिटी में एमएससी में क्रिमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ऐसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो क्रिमिनोलॉजी का जो पहला लेक्चर देते हैं प्रोफेसर साहब, उसमें वो एक घटना सुनाते हैं। दो लोगों ने गोलियां चलाई, बंदूक की गोलियां, और दोनों गोलियां दो लोगों को लगी। लेकिन जब उनसे सवाल जवाब हुआ तो क्वेश्चनिंग, क्रॉस क्वेश्चनिंग बोलते हैं उसको, तो सवाल जवाब में ये बात सामने आ गई कि एक फायरिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, यानी गोली चलाने का अभ्यास कर रहा था, और उसकी गोली धोखे से किसी को लग गई थी, और जिसको लगी थी वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, और दूसरे की गोली निशाना चूक जाने के कारण सही स्थान पर नहीं लगी थी। तो एक को कुछ जुर्माने में छुटकारा मिल जाता है, मैंने जो भी मुआवजा है वो दे देता है, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, उसको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन दूसरा जिसका निशाना चूक गया था, निशाना उसने उसकी जान लेने के लिए साधा था, लेकिन निशाना चूक जाने के कारण बच गया था वो, उसके ऊपर क्रिमिनल केस होता है। क्रिमिनल केस माने अटेम्प्ट टू मर्डर, शायद 302 या जो भी नंबर हो उसका। तो ये अंतर क्यों? दोनों के पास सेम बंदूक थी, वो एक ही प्रकार की बंदूक, एक ही कंपनी की बंदूक, और जिनको चोट लगी है उनको दोनों को वैसी चोट लगी है। लेकिन जब प्रश्नोत्तर हुए तो फिर उनका इरादा समझ में आ गया, और उसके बाद फिर सजाओं में फर्क पड़ गया। कहने का मतलब ये है कि किसी भी अपराध का निर्णय सिर्फ बाहरी घटना पर आधारित नहीं होता। उस घटना में अंदर भावना कैसी क्या है उसको देखा जाता है। मारने की भावना से चलाई गई गोली अगर निशाना चूक जाए तो मारती तो नहीं है, लेकिन गोली चलाने वाले को मारने का प्रयास करने की सजा दिला देती है। और वो जो प्रैक्टिस कर रहा था, फायरिंग की प्रैक्टिस होती है, पुलिस विभाग में भी होती है और फिर मिलिट्री में भी होती है, तो गोली चलाने का अभ्यास करने वाले अगर गोली चूक जाए, निशाना चूक जाए और किसी को लग जाए, तो उसके लिए वो दंड नहीं दिया जाता। इसका कारण स्पष्ट है, इंटेंशन। तो क्रिमिनोलॉजी नाम का जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले ये बताते हैं कि इंटेंशन, इरादा क्या है। बस इसी प्रकार यहां पर देखो, ये साइंस के हिसाब से चल रहा है। लॉजी का मतलब लॉगोस, डिस्कोर्स, जर्मन लैटिन शब्द है वो, तो उसका मतलब व्याख्या, उपव्याख्या, खुलासा। तो इसी प्रकार संलेखना और आत्महत्या के बारे में भी इरादे को पढ़ना जरूरी है। आत्महत्या करने वाले का इरादा क्या है और संलेखना करने वाले का इरादा क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर यहां आ जाएगा। तो क्या है आपके ख्याल से, क्या है इरादा? आत्महत्या करने वाला क्यों करता है आत्महत्या? आत्महत्या शब्द प्रचलित है गुजराती में, क्या बोलोगे आप लोग? आत्महत्या क्या मतलब हुआ उसका? क्या है उसका इंटेंशन, क्या है उसका इरादा, क्या है? हाँ ये तो ठीक है, उसका इरादा क्या है? उसको एक वाक्य में अपन बोल सकते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यही सोच करके व्यक्ति आत्महत्या करता है। स्पष्ट आया समझ में? क्योंकि अभी ये एकदम कोड भाषा हो गई एक प्रकार की, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका मतलब क्या है? मैं जीवित हूं इसलिए मेरे जीवन में इतनी मुसीबतें हैं, अगर मैं मर जाऊंगा यार मेरा जीवन ही नहीं रहेगा तो ये मुसीबत कहाँ से रहेगी? ये उसका इरादा है। मतलब ये हुआ कि आत्महत्या करने वाले का भाव, उसका इरादा, उसका इंटेंशन ये होता है कि वो अपना नाश चाहता है, मैं नष्ट हो जाऊं। तो ये जितने भी मेरे आसपास कष्ट है, जो भी मेरा वातावरण है जिससे मैं परेशान हो रहा हूँ, कई कारण हो सकते हैं आत्महत्या के। बाह्य कारण अगर देखें अपन, तो किसी के परिवार में ऐसा संकट चल रहा है कि वो सहन नहीं कर पाता। एक अच्छे खासे डॉक्टर हमारे पास आए थे, उनके बड़े बड़े लेख छपते थे पत्रिकाओं में, और लोग बड़े ध्यान से पढ़ते थे उन लेखों को, शाकाहार के ऊपर और फिर और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर के उनके लेख निकलते थे। गोरस, गोरक्त, इस पर भी लेकर उन्होंने लेख लिखे हैं। दूध को गोरस कहते हैं, गोरक्त नहीं कहते, ऐसे सब लेख उन्होंने निकाले थे। एक बार जबलपुर में हम बैठे थे मड़िया जी में क्षेत्र में, और हम अपना स्वाध्याय करने वाले थे, तो फिर वो आए दोपहर 2:30 बजे, और फिर आकर के उनके चेहरे पर उदासी थी, और बोले कि दुनिया मेरी वैल्यू करती है लेकिन ये कैसी विडंबना है, भाग्य की विडंबना है कि मेरी पत्नी मुझे धूल के बराबर समझती है। यानी दुनिया तो मुझे डॉक्टर साहब कहती है, और पत्नी जो तू तड़ाके से बात करती है, कोई कीमत नहीं है। शायद ये मेरे अंतिम दर्शन है, ऐसे इच्छामि महाराज ऐसे किया उसने। हमने सोचा कि अब इतनी सीमा तक जिसने विचार कर लिया है उसको क्या बोले। फिर भी हमने उनसे कहा कि अगर आपको एक बात माननी हो, बस उतना एक काम और कर लेना, फिर जो आपको करना हो सो आपकी मर्जी। उन्होंने बोला ठीक है महाराज, जब आप कह रहे हो तो फिर वो काम हम करेंगे, और बाद में जो कुछ करना है सो करेंगे। फिर कुछ समय के बाद वो आए, वो काम करने के बाद, और फिर उनने आकर के कहा कि चश्मा उतारने के बाद, रंगीन चश्मा उतारने के बाद, सफेद कपड़ा का सही रंग समझ में आता है। मैं उस चश्मे से देख रहा था इसलिए जीवन अंधकार में था और मरने के विचार मेरे अंदर आए थे, लेकिन अब उस चश्मे को मैंने उतार दिया है, मेरी समझ में ये आ गया कि जिसका जो स्तर है उससे उस स्तर के पार की अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप पंक्चर सुधारने की दुकान पर अंगूठी नहीं खरीद सकते। जहां वो पंक्चर सुधारता है ना, वहां से अंगूठी आप नहीं खरीद सकते। उसी प्रकार अपन अनावश्यक अपेक्षाओं में फंस करके अपने मन में टेंशन पैदा कर लेते हैं, इसको ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, ये ठीक नहीं हो रहा है, ये ऐसा होना चाहिए था। ये सब जो है ये व्यर्थ के टेंशन्स हैं, और इन तनावों में उलझ करके व्यक्ति का जीवन एकदम अटक जाता है, क्योंकि कोई चारा नहीं, अपनी इच्छाएं कहां से पूरी होंगी। पूरी दुनिया में किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो फिर अपन यहां पंचम काल कलिकाल के बंदे, यहां के संसारी प्राणी, अपनी इच्छाएं कैसे पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन व्यर्थ की इच्छाएं, जहां से जो इच्छा पूरी नहीं हो सकती वहां से वो इच्छा करना बुद्धिमानी है या बेवकूफी? बेवकूफी शब्द सुनकर के झटका सा लगता है कई लोगों को, लेकिन एक सत्य, मतलब एक सर्वे करने के बाद किसी ने निकाला था कि 24 घंटे में हर इंसान के जीवन में एक झटका आता है बेवकूफी का। 24 घंटे में एक बार कहीं ना कहीं वो बेवकूफी कर डालता है। जैसे उदाहरण के लिए, एक उदाहरण उसका ये होता है कि जेब में चश्मा रखा है लेकिन वो रेफ्रिजरेटर के ऊपर ऐसे ऐसे देखता है, फिर इधर अपनी अलमारी में देखता है, इधर उधर देखता है, फिर कोई पूछता है कि क्या ढूंढ रहे हैं आप, तो फिर वो एकदम जल्दी से नहीं बोलता, फिर कुछ नहीं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूं बोले। अंदर ही अंदर उसको ये महसूस हो जाता है कि ये एक झटका था वो वाला। अभी जिसको पता नहीं होगा कि 24 घंटे में एक झटका आता है, आज तो पता चल गया, इसलिए अब देख लेना आगे कैसा क्या है। और फिर एक डेल कार्नेगी हुए हैं, वो भी आत्महत्या करने का सोच करके चले गए आत्महत्या करने, और जब आत्महत्या करने गए तो फिर दो तीन कारणों से वहां वो अटक गए। एक कारण तो ये बना कि अगर मैं मर गया तो फिर मेरी बहन को बड़ा दुख होगा, और दूसरा कारण ये बना कि घर में पैसे इतने नहीं है कि मेरा अंतिम संस्कार कर सके, मतलब इतनी गरीबी थी उनके घरों में। और तीसरा कारण ये था कि वो जब आत्महत्या के लिए जा रहा था तो फिर एक बूढ़ी माँ, एक दादी, बड़े प्रसन्न मुद्रा में, उसके शरीर में भी अपंगता थी, मतलब शरीर भी ठीक ठाक नहीं था उसका, तो भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता देख करके इसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जवान हट्टा कट्टा बिल्कुल सही सलामत और मैं मरने की सोच रहा हूँ, और इसकी हालत देख करके ऐसा नहीं लगता कि इसको जीना चाहिए, लेकिन ये कितनी प्रसन्न है। तो बस वहाँ से उसने बदल दिया अपना जीवन, और उसके बाद फिर उसने कई पुस्तकें लिखी हैं, सारी दुनिया को लाभ पहुँचाया उसकी पुस्तकों से। उसकी एक पुस्तक हमने उन डॉक्टर साहब को दे दी, और डॉक्टर साहब जब उस पुस्तक को पढ़ करके वापस आए, वापस आकर के उनने यही बोला कि मेरी दृष्टि में त्रुटि थी, वातावरण को कभी भी दोष नहीं दिया जा सकता, वातावरण कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा हमेशा अपना नजरिया होता है, अपने सोचने का ढंग होता है। अपन अगर ये सोच के चले कि आज का दिन तो बेकार जाने वाला है, तो फिर वो दिन अच्छा जाने वाला होता तो भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि आपने उसको वैसा चुन लिया, यानी अपना चॉइस है, अपन जैसा जीवन को बनाना चाहते हैं जीवन उसी प्रकार से बदलता चला जाता है, वैसा ही ढल जाता है। तो मैंने जब ये देखा कि मैं जिससे, जिस चीज की अपेक्षा कर रहा हूं वो उससे करना ही नहीं चाहिए, तो मुझे एकदम क्षण मात्र में शांति प्राप्त हो गई। यानी अशांति को पैदा करने वाला मेरा ही मन था, क्योंकि उसने अनुचित स्थान से किसी चीज की आकांक्षा की थी। ठीक है, अगर मान सम्मान की आकांक्षा हो आपको, तो फिर जहां मिल सकता है वहां अपनी नजर डालो, जहां नहीं मिल सकता वहां कैसे आप मान सम्मान चाहोगे? जैसे मान लो आप अपने किसी ऑफिसर के यहां जाते हैं, कोई पहचान वाले, उसका कुत्ता अगर आपको भौंकता है देख करके, तो आपको टेंशन आता है क्या? अरे मैं इतना प्रतिष्ठित आदमी और इनके यहां आया और इनका कुत्ता मेरे को देखकर भौंक रहा है, ऐसा कभी लगता है किसी को? क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप जानते हैं कि कुत्ता इससे अधिक कुछ कर ही नहीं सकता। तो बस ये सबसे बड़ी जड़ है अपने दुखों की, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आप हटाओ दिमाग से, एक दिन में आपके जीवन में शांति आ जाती है। कहीं दूर नहीं है शांति, अशांति भी अपने ही भीतर पैदा होती है और शांति भी उस दृष्टि को, उस नजरिए को बदलने पर अपने आप अंदर महसूस होने लग जाती है। तो फिर पहली चीज वहां ये निकली कि आत्महत्या करने वाले और संलेखना करने वाले में पहला अंतर यह है कि आत्महत्या करने वाले का इरादा इससे अलग है। उसका इरादा यह है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी मेरा जीवन ही नष्ट हो जाएगा तो इस जीवन में होने वाला कष्ट भी नष्ट हो ही जाएगा। पर यह भी उसका सोचना है, मनुष्य जो जो सोचता है वो सब सत्य हो ऐसा नियम नहीं है। कई बार भ्रम को भी व्यक्ति सच समझ करके चला जाता है। रात को कहीं रास्ते पर रस्सी पड़ी हो और वो चला आ रहा हो, घर आकर के बोलता है कि 5 फुट लंबा सांप देखा मैंने, तो अब अपने भ्रम के कारण व्यक्ति वही वही अनुभूतियां करता है, उसके शरीर में उसके रक्त स्राव में वही एड्रेनालिन और वही हार्मोन्स सिक्रीट होंगे जो सांप को देखने पर होते हैं। वही उसके रक्त की जो संरचना, रासायनिक परिवर्तन वैसा ही मिलेगा जैसा असली घटना घटने पर होता है। मानसिकता का इतना असर है अपने ऊपर। तो आत्महत्या करने वाले की एक मानसिकता है और संलेखना करने वाले की एक दूसरी मानसिकता है। इसलिए आत्महत्या और संलेखना दोनों को मानसिकता की दृष्टि से अपन सोचें तो बराबर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि एक की मानसिकता आकुलित है। आत्महत्या करने वाला नियम से जीवन से हारा हुआ मनुष्य होता है, बिल्कुल ये अकाट्य नियम है कि जो जीवन से हारेगा वही ऐसे विचार करेगा, जीवन से हारा हुआ। और संलेखना धारण करने वाला, कितना बड़ा अंतर है दोनों में देखना। संलेखना धारण करने वाला मृत्यु को जीतने वाला मनुष्य है, एक जीवन से हारने वाला है तो दूसरा मृत्यु को जीतने वाला है। पहला फर्क तो समझ में आ ही गया था कि दोनों के इरादे एकदम अलग अलग हैं। एक अपने जीवन का नाश चाहता है, संलेखना धारण करने वाला नाश को निकट जानकर शांति का पुरुषार्थ करता है, साधना करता है कि मन को अधिक से अधिक शांत किया जाए और आत्मा की पवित्रता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, उसकी प्रक्रिया है। शरीर और आत्मा यद्यपि दो द्रव्य हैं, दो पदार्थ हैं, लेकिन तो भी संसारी जीव किसको कहते हैं? इस प्रश्न का यदि जवाब खोजा जाए शास्त्रों में तो आचार्य गुणभद्र स्वामी ने आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि जिस जीव के पास स्वभाव हो, जिस जीव के पास विभाव हो और जिस जीव के पास शरीर भी हो, उस जीव को संसारी जीव कहते हैं। तो इसलिए शरीर को एकदम अलग नहीं माना जा सकता, वो संसारी जीव का एक हिस्सा है, जीव नहीं है लेकिन जीव का एक भाग है, एक हिस्सा है। जब तक संसार में रहेगा स्थूल शरीर तो स्थूल, वरना विग्रह गति में भी सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है साथ में, परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्ये गुणम प्राक तेजसात अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य। ये सूत्र लगे ही हैं, सर्वस्य क्या मतलब है? सबके पास होता है वो सूक्ष्म शरीर। तो उसका इरादा क्या है? अपना नाश। और संलेखना करने वाले का इरादा क्या है? उसने जाना है कि नाश दूर नहीं है, नाश करो तो भी होगा, न करो तो भी होगा, क्योंकि सांसों की गिनती निश्चित है, अथवा आयु अपन सीमित लेकर के आए हैं। 33 सागर से अधिक आयु वैकृत शरीर के साथ भी नहीं हो सकती। फिर अपना तो औदारिक शरीर है, कर्म भूमि में अगर पैदा हुए हैं तो पूर्व कोटि से ज़्यादा नहीं हो सकती आयु, तो आयु तो सीमित है, इसलिए नाश निश्चित है। जन्म हुआ है तो मरण भी उसका दूसरा छोर है, जीवन का एक छोर जन्म, दूसरा छोर मरण है। तो मरण निकट है ऐसा जानकर संलेखना धारण करने वाला अंदर के विकारों को छोड़ता है और बाहर के आहार आदि को क्रम से छोड़ता है। वो जानता है कि अगर एकदम भूख हड़ताल पर उतर आए तो फिर संलेखना और आत्मघात में फर्क नहीं रहेगा, एकदम भोजन पानी छोड़ देंगे तो प्राणांत हो सकता है। कई लोगों का हुआ भी है, क्षमता से अधिक उपवास करने पर कुछ लोग असमय में मृत्यु के ग्रास बन गए हैं, कई बार, एक बार नहीं कई बार। 10 उपवास की किसी में क्षमता नहीं थी और जिद करके उसने 10 उपवास किए तो प्राणांत हो गया। होता है ऐसा, कल ही अपन ने गाथा पढ़ी थी आचार्य कुंदकुन स्वामी ने अष्टपाहुड़ में, भावपाहुड़ ग्रंथ के अंतर्गत, मरण असमय में किन कारणों से हो सकता है इसके बारे में बहुत सुंदर निमित्त बताए थे, सुंदर ढंग से बताए थे, निमित्त सुंदर नहीं थे, मरने के निमित्त कभी सुंदर कैसे होंगे, बताने का ढंग बड़ा सुंदर था। उसमें एक बात लिखी थी, भोजन पानी को अथवा श्वास को रोक देने पर भी असमय में व्यक्ति मर जाता है। तो वो इस तरीके से नहीं कर रहा संलेखना धारण करने वाला, बड़े ही व्यवस्थित क्रम से वो चलता है। ये बात अलग है कि अंत में शरीर बहुत क्षीण हो जाता है, चर्म और अस्थियां दिखाई देती है, पेशियां तो बिल्कुल सूख सी जाती है, लेकिन आंखों में एक अलग तेज नजर आता है, गाल वगैरह सब धस जाते हैं। कभी आपने अगर संलेखना देखी हो तो पता हो, ये फोटो देखा हो तो पता हो, एकदम क्षीणता आ जाती है क्रम से अगर चल रही हो तो। ये तो दोनों प्रकार के विकल्प हो सकते हैं, संलेखना अगर आकस्मिक स्थिति बन जाए मरण की तो उसका एक अलग अनुष्ठान होता है, अलग विधान है, और अगर क्रम से उस विधि को संपन्न किया जाए तो फिर एक अलग प्रक्रिया होती है। और क्या फर्क है इसमें, संलेखना में, आत्महत्या में? आत्महत्या करने वाला एक तो नाश चाहता है अपना, और फिर एक बात तो ये हो गई कि वो जीवन से हारा हुआ होता है। और तीसरी बात ये है कि वो कायर होता है, माने उसके अंदर साहस थोड़ा भी नहीं बचता तब वो ये काम करता है। और संलेखना बहुत साहस पूर्वक की जाती है, भीरू प्रकृति का डरने वाला मनुष्य संलेखना से भी घबरा जाएगा, कर नहीं सकता संलेखना। और एक बहुत बड़ा मेजर फर्क उसका यह है, बहुत बड़ा फर्क ये है कि आत्महत्या 5 मिनट में तो की जा सकती है, 6ठे मिनट में नहीं की जा सकती। ये एक उदाहरण दे रहे हैं मिनट्स का, समझने की कोशिश करना इसका भाव क्या है। आत्महत्या जो है, जब तक उसके अंदर वो आवेश है, उतनी देर में कर ले तो कर ले। कुएं में कूदने वाला है, पीछे से पकड़ लिया किसी ने, अरे यार तुमने पूरा प्रोग्राम फेल करा दिया, बोले फिर कर सकता है क्या? बोले कि क्या कर रहे थे तुम? बोले कि बहुत जीवन बर्बाद हो गया मेरा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब तो बस एक ही रास्ता है। अगर वो वैसे ही यूं ही कह दे कि अच्छा ठीक है फिर तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, अगर तुम्हारा जीवन बर्बाद हो लगाओ छलांग, बोले फिर लगाएगा क्या? फिर नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि आत्महत्या एक बहुत ही संक्षिप्त समय में होने वाली घटना है, उसके बाद आत्महत्या नहीं की जा सकती। फिर से उसको उतना आवेश पुनः पैदा करना पड़ेगा आत्महत्या करने के लिए, उतनी पूरी तैयारी वापस करनी पड़ेगी उसको। लेकिन संलेखना बिल्कुल इसके विपरीत, थोड़े समय में नहीं हो सकती, उसके लिए लंबी तैयारी चाहिए। संलेखना के लिए कम से कम मानसिकता चाहिए बहुत लंबी। और क्या अंतर? आप सोचते चले जाओ, सोचते चले जाओ, अंतर ही अंतर मिलते चले जाएंगे। बहुत सुंदर बात कही आपने कि आत्महत्या जो होती है वो अनाउंस करके नहीं होती, बिना पब्लिसिटी के, बिना प्रचार प्रसार के, चोरी से की जाने वाली घटना है आत्महत्या। व्यक्ति अपने दोस्त को बताकर करता है क्या? अपनी माँ को बताकर करता है क्या? अपने गुरु को बताकर करता है क्या? जब करता है वो तो बस चुपचाप कर लेता है और देखता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। कितना सुंदर पॉइंट है ये। और फिर संलेखना, एक शंका आई, ये भी एक अच्छी बात है। वैसे पहले बतलाया था हमने, जीवन मरण के जो चक्कर है, चक्र, उसको समाप्त करने के लिए, जीवन को मतलब वर्तमान जीवन को समाप्त करने के उद्देश्य से संलेखना नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अंत आना ही है। जीवन का अंत तो निश्चित है, जिसका प्रारंभ हुआ है उसका अंत होना ही है, तो इसलिए अंत को निकट जान करके वो संलेखना कर रहा है। उद्देश्य क्या है? जन्म मरण का सिलसिला ही समाप्त हो जाए। और उसका उद्देश्य क्या है? न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये दृष्टांत दिया था हमने कि मैं ही समाप्त हो जाऊं, मैं ही समाप्त हो जाऊं, यानी अपना अस्तित्व मिटाना चाहता है। और वो अपना अस्तित्व मिटाना नहीं चाहता, लेकिन जन्म मरण के फेरे को समाप्त करने के लिए करता है। और देखिए अब भावों में क्या अंतर, और भी अंतर है। देखिए आत्महत्या बेचैनी के साथ ही संभव है, और संलेखना शांति के साथ ही संभव है। कितना बड़ा अंतर है। आत्महत्या आकुलता के बिना कर ही नहीं सकता कोई, बहुत आकुलता चाहिए अंदर, और संलेखना में निराकुलता अनिवार्य है। आकुलता के साथ संलेखना नहीं होती, और आकुलता अगर होती है तो फिर उसको संबोधित करना पड़ता है कि क्यों आकुलता करते हो, इससे अधिक वेदनाएं तो तुमने पहले सहन की है कई जन्मों में, संसार में तुम कहाँ नहीं भटके, कौन सा दुख तुमने नहीं प्राप्त किया, क्यों आकुल होते हो? शांति रखो, सहन करो। उसको सहनशीलता जगाने के लिए बहुत सारे उपदेश दिए जाते हैं, कई अच्छी अच्छी कथाएं सुनाई जाती है। हमें भी आज लग रहा था कि एक कथा हम सुनाएं आपको, संलेखना के समय सुनाई जाने वाली कथा। वैसे आपकी संलेखना तो अभी चालू नहीं है, लेकिन फिर भी कथा सुनने में तो बहुत मन में पवित्रता आ जाती है। कभी भी सुनो वो कथा, तो ऐसी है, बहुत सारी कथाएं हैं उसमें, करीब 17 छंद है बड़े समाधि मरण में, जिसमें सिर्फ कथाओं का ही, दृष्टांतों का ही उल्लेख है। सनत कुमार मुनि के तन में कुष्ठ वेदना व्यापी, छिन्न भिन्न तन तासों हुवो, तब चिंतो गुण आपी। यह उपसर्ग सहोधर थिरता, आराधन चित धारी, तो तुम रे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। उसको संबोधन दे रहे हैं जैसे किसी कि मृत्यु का समय निकट आ गया, संलेखना धारण की उसने, तो उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें तकलीफ तो हो रही है, क्योंकि शरीर जब क्षीण हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है संलेखना के समय, हड्डी पसलियां रह जाती है, तब अपने जो जोड़ होते हैं वो जिस स्थान पर अपने को बैठाया जाता है, लेटाया जाता है, उसके स्पर्श से वहां की त्वचा पीड़ा पहुंचाती है। जैसे बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति हो तो उसको बैठने में तकलीफ होती है कठोर स्थान पर, कोमल स्थान पर बैठना एक अलग बात है, बल्कि ये कहो कि कोमल स्थान में भी कभी कभी छाले पड़ जाते हैं, बेड सोर्स बोलते हैं उसको, यहाँ कंधे पर पड़ते हैं, कमर के आसपास भी पड़ जाते हैं, यहाँ घुटने के पास भी पड़ते हैं, कभी यहाँ कोहनियों में भी पड़ जाते हैं। जिन्होंने संलेखनाएँ देखी है और संलेखना धारण करने वाले श्रावक को साधक कहते हैं और संलेखना धारण करने वाले मुनि को क्षपक कहते हैं, ये दो पारिभाषिक शब्द हैं। मुनि यदि संलेखना धारण कर रहे हैं तो उनको क्षपक कहेंगे और श्रावक यदि संलेखना धारण करेंगे तो साधक कहेंगे। वैसे तो जो साधना करे सो साधक एक सामान्य शब्द हो गया, लेकिन यहां पर ये स्पेसिफिक माने विशिष्ट शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। तो उस समय जो वेदना होती है, एक बार एक माताजी की संलेखना हो रही थी जबलपुर में, तो उनके यहाँ पर जो बेड सोर्स पड़ गए थे तो ऐसे हाथ दबाते थे, ऐसे ऊपर की तरफ करते थे, तो उसके अंदर से ऐसे मवाद की धार बहती थी, पीप पस बोलते हैं ना जिसको, वो ऐसे बिल्कुल दबा करके जब निकालते थे तो पूरे मतलब छोटी छोटी कटोरियां भर भर करके उनके शरीर में से पस निकलता था। अब इसमें क्या है कि आप घबराइएगा मत, क्योंकि इन सब बाधाओं को पार किए बिना संसार से छुटकारा नहीं मिलने वाला। आप सोचो कि बड़ी सुविधा से एयर कंडीशनर में बैठ करके मुक्ति मिल जाए, न भूता न भविष्यति, होता नहीं ऐसा। कठिनाइयों से डरने वाले जैन मार्ग की साधना कभी स्वप्न में भी नहीं कर सकते। और जैन तपस्या वो तपस्या है, प्रोफेसर एलसी जैन ने कहा था कि जो मौत को अपनी हथेली पर लेकर के चलता है वही जैन साधु बन सकता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती। एक बार भोजन और दीक्षा के समय ये निश्चित नहीं है कि कल आहार होगा कि नहीं होगा, परसों होगा कि नहीं होगा, एक हफ्ते तक के आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक महीने तक का भी भरोसा नहीं है कि एक आध आहार भी ठीक हो जाए, कोई ठिकाना नहीं है। धन्य कुमार मुनिराज को 9 महीने तक आहार नहीं मिला था, और मिला था तो बीच बीच में विघ्न आ जाते थे, आहार कभी पूरा नहीं हुआ उनका, 9 महीने तक शरीर हड्डी पसली रह गया। तो दीक्षा लेने वाला इतने साहस के साथ दीक्षा लेता है, वो इन सब बातों को विचार कर लेता है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो तपस्या अंगीकार करना ही है। कितना अद्भुत साहस है वो, सामान्य बात नहीं है। कोई समझे कि मुनि पद धारण करना तो बहुत साधारण बात है, अनंत बार जीव धारण कर चुका है, तो उसके बारे में एक दिन हमने कहा था, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भाई मुनि पद तो जीव ने संसार में भटकते भटकते 84 लाख योनियों में कई बार मनुष्य पर्याय में धारण किया है, अनंत बार धारण कर लिया मुनि पद। पर सच्चा ज्ञान आज तक प्राप्त नहीं किया, इसलिए मुनिपद धारण करने के बाद भी संसार भ्रमण समाप्त नहीं हुआ। सच्चा ज्ञान हो और फिर मुनिपद हो तो आत्मा का उद्धार होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सोचने की बात यह है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करना यदि इतना कठिन है तो सरल क्या हुआ? जो चीज अनंत बार प्राप्त हो गई वो सरल हुआ कि नहीं हुआ? तो यदि वो सरल है तो पहले सरल ही तो करके बता दो, फिर बाद में कठिन काम कर लेना। और जब मुनि अनंत बार बना है जीव, तो श्रावक कितनी बार बना होगा? गणित लगाओ ना, क्या है कि ऐसा नहीं कि एक धुन में चले गए, थोड़ा आगे पीछे का भी हिसाब लगाओ। अगर मुनि अनंत बार बना तो श्रावक कितनी बार बना होगा? अब श्रावक जितनी भी बार बना हो, असंयमी कितनी बार बना होगा? फिर बना नहीं है ही, बना तो तब जाता है जब जो चीज न हो और अपन बने, उसका अभ्यास करे, पुरुषार्थ करे, उसको प्राप्त करे, तब कहा जाता है कि बना, डॉक्टर बन गया। डॉक्टर नहीं था तब तो बना। और असंयमी, असंयमी बनना पड़ता है क्या? असंयमी तो है ही है, उसको अलग से बनने की जरूरत ही कहां है। तो सोचने की बात यह है कि जिसको इतना आसान समझ रहे हैं आप मुनि पद को, वो क्या वास्तव में उतना आसान है? देखो, कोई भी कैसे भी मुनि हो, एक्स वाई जेड, लेकिन उनके जीवन में कुछ बातें तो समान है। कौन सी बातें समान है? कि वो पैदल चलेंगे। कितना भी तपा हुआ रास्ता हो, कैसी भी भीषण गर्मी हो, पैदल चलेंगे। और केश लुंचन करेंगे। ये दो काम भी हंसी खेल नहीं है। पैदल चलने का आप एक हफ्ते नियम ले लो तो समझ में आ जाए पैदल चलना आसान है या क्या है। और दूसरा क्या बोला था हमने? केश लॉन्च करेंगे। केश लॉन्च का तो आपको अनुभव होगा, कभी कंघी करते करते बाल फंस जाते हैं तो होता है। ये क्या है? ये स्पर्शन इंद्रिय की गुलामी है। और जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके, केश लॉन्च करते समय भी भावों में अंतर हो सकता है, कोई पीड़ा के साथ भी करते हैं, लेकिन फिर भी उपदेश तो यही है कि केश लॉन्च में पीड़ित नहीं होना, बिल्कुल शांत भाव से केश लॉन्च करना। जब तुमने ये जाना है कि शरीर पर है, तो फिर जो कुछ भी हो रहा है उस समय ख्याल रखो अपने भेद ज्ञान का। सुख सुविधाओं में तो अच्छी अच्छी बातें करना सरल है, लेकिन प्रतिकूलता में अगर कुछ आप तत्व का स्मरण करें, तब तो आपका तत्व ज्ञान सार्थक है, तब आप परीक्षा में पास हैं। और प्रतिकूलता आने पर अगर आप तत्व ज्ञान को भूल जाएं और यहां वहां भटक जाएं, तो फिर वो ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉट नॉलेज। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में क्या अंतर? राजीव दीक्षित ने बोला था, दुनिया के पास इन्फॉर्मेशन है कि आग जलाती है, लेकिन जो जला है उसके पास नॉलेज है कि आग जलाती है। इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी और नॉलेज यानी ज्ञान। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। प्राय भ्रम यह होता है आत्मा के बारे में जानने वाले को कि मैं आत्मा को जानता हूं, और उस भ्रम में फिर उसका जीवन गुमराह हो जाता है। आत्मा को जानना कोई निराली घटना है। कहते हैं ना कि दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली, खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली खुद अपने से जिसने मुलाकात कर ली, तो उस समय जब उसको वेदना होती है तब उसको ये सब सुनाया जाता है। ऐसे ऐसे महान मुनियों की घटनाएं सुनाई जाती है कि उसके मन में थोड़ा सा विचार उठते हैं कि देखो मुझे जो भी वेदना है, जो भी वो वेदना, क्या उतनी बड़ी है जितनी उनको हुई थी? नहीं, फिर उनने कैसे सहन किया? क्या मेरा शरीर सुकुमाल स्वामी से भी अधिक नाजुक है? उनको राई का दाना चुभता था, मुझे तो नहीं चुभा आज तक राई का दाना। फिर मैं